करीब 4.5 साल हो चुके हैं मोदी सरकार आकर, और आज मोदी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और अब शुक्रवार को इस पर चर्चा होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आखिर होता क्या है और इस पर किस तरह से आगे कार्रवाई होती है, कौन कौन अविश्वास प्रस्ताव को ला सकता है, इस बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन आज जो हुआ उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। आज ये अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ टीडीपी की तरफ से लाया गया। टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी, ये पार्टी कुछ वक्त तक एनडीए की सहयोगी पार्टी थी, लेकिन आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा ना दिए जाने के चलते ये पार्टी एनडीए से अलग हो गई और उसने आज अविश्वास प्रस्ताव लाया। इस अविश्वास प्रस्ताव को लगभग 50 से भी ज्यादा लोकसभा के सदस्य यानी कि सांसदों का सहयोग मिला, जिसके बाद स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इसे मंजूरी दे दी। अब शुक्रवार को इस पर चर्चा होगी। हम आपको बताते हैं कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। ये हमारी टीवी स्क्रीन है, यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव और कौन ला सकता है इसे। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों की तरफ से रखा जाता है, यानी कि जो विपक्षी दल हैं वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। यह केवल लोकसभा में ही रखा जाता है, यानी कि राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता। जब विपक्षी दलों या किसी एक पार्टी की तरफ से ये अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है, जब सरकार के पास सदन में बहुमत ना हो, यानी कि जब कोएलिशन की सरकार बनती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो सहयोगी दल होते हैं वही नाराज हो जाते हैं और ऐसे में सरकार के पास सदन में बहुमत नहीं होता है, तो उस वक्त भी ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और इस अविश्वास प्रस्ताव को कोई एक पार्टी उस वक्त ला सकती है जब उसे ऐसा लगे कि सरकार चलाने के लिए असमर्थ है। अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित नियम 198 के तहत व्यवस्था है, यानी कि जो नियम है उसके अंदर 198 के तहत इसे ला सकता है और कोई भी लोकसभा सदस्य यानी कि कोई भी एक सांसद अध्यक्ष यानी कि स्पीकर को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दे सकता है। यह तो हुई प्रस्ताव लाने की बात। अब इस प्रस्ताव के आने के बाद क्या होता है? सरकार बने रहने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का गिरना जरूरी यानी कि नामंजूर होना जरूरी होता है। अगर इसे मंजूर कर लिया जाता है तो सरकार गिर जाती है। सदन में मौजूद कुल सदस्यों में से बहुमत अगर सरकार के खिलाफ वोट देने वाला है तो सरकार गिर जाती है, यानी कि जब इस पूरे मामले पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है और सरकार के खिलाफ जो सदस्य वोट देते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है तो सरकार गिर जाती है। ऐसा इसके पहले भी हुआ है, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के वक्त अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो एक वोट की वजह से जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी वो गिर गई थी। लोकसभा अध्यक्ष इसकी चर्चा के लिए तारीख बताते हैं। प्रस्ताव पेश होने के 10 दिन के भीतर इस पर चर्चा जरूरी है, इसके बाद स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करा सकते हैं या फिर कोई और फैसला ले सकते हैं, यानी कि 10 दिन के भीतर इसमें सुनवाई होना जरूरी है, इस पर चर्चा होना जरूरी है और उसके बाद चर्चा के बाद वोटिंग भी होती है और हो सकता है कि स्पीकर भी इस पर अपना फैसला ले लें। अब हम आपको बताते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों का होना जरूरी है। अविश्वास प्रस्ताव नोटिस देने वाले के पक्ष में 50 सदस्य होना चाहिए, यानी कि जो भी पक्ष या फिर कोई एमपी अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस देता है तो उसके साथ लगभग 50 सांसद होना जरूरी होते हैं। वहीं जब इस पर चर्चा होती है तो सदस्यों की संख्या सरकार के सदस्यों के संख्या से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि अगर जब इस पर चर्चा होती है तो जो सरकार है सरकार के विपक्ष में जो बैठे हुए हैं उनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए। मौजूदा मोदी सरकार के पास एनडीए के सभी सहयोगी दलों को मिलाकर लोकसभा में 310 सदस्य यानी कि सांसद हैं, यानी कि मोदी सरकार के पास इस वक्त काफी अच्छी संख्या बल है। हालांकि सोनिया गांधी ने यह कहा है कि उनके पास अच्छी खासी संख्या बल है। अब हम आपको बताते हैं कि किसके पास कितने सांसद हैं और किसकी कितनी संख्या बल है। तो हम अभी आंकड़े दिखाते हैं आपको कि संसद में किसके पास कितने सदस्य हैं। सबसे पहले सरकार की बात करेंगे जो कि एनडीए की सरकार है, मोदी की सरकार है। मोदी की सरकार में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके पास 273 सांसद हैं। दूसरी बड़ी पार्टी आती है एनडीए में, वो है शिवसेना, जिसके पास 18 सांसद हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी की अगर बात करें तो उसके पास 6 सदस्य हैं। अकाली दल पंजाब में, उसके पास 4 सदस्य हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के पास 3 सदस्य हैं। जेडीयू जो कि इस वक्त बिहार में भी और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सहयोगी पार्टी है, तो उसके पास 2 सदस्य हैं। अपना दल के पास भी 2 सदस्य हैं लोकसभा में। एनपीपी के पास 1, एनडीपीपी के पास 1, आरएसपी के पास 1, एसडीएफ के पास 1। यानी कि इन कुल मिलाकर अगर ये आंकड़ा देखते हैं तो ये कुल मिलाकर 312 जाते हैं। अगर ये आंकड़े सरकार के पक्ष में वोट करते हैं तो सरकार अविश्वास प्रस्ताव से बच जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मुश्किल हो सकती है तो वो हो सकती है यहां पर शिवसेना, क्योंकि शिवसेना काफी वक्त से सरकार से नाराज है और शिवसेना ने इसके पहले ये ऐलान कर दिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के साथ नहीं जाएगी। अब हम अभी आपको दूसरे आंकड़े दिखाते हैं जो एनडीए के विपक्ष है। लोकसभा में कुल मिलाकर 543 सीटें हैं और इन 543 सीटों में किसके पास कितना है, आइए वो देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी है उसके पास 273 सीटें हैं। कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, 48 सीट है। इसके अलावा AIADMK उसके पास 37 सीट है। TMC के पास 34 सीट है। BJD बीजू जनता दल के पास 20 सीट है। शिवसेना के पास 18, TDP के पास 16, TRS के पास 11, CPM के पास 9, समाजवादी पार्टी के पास 7। अन्य जो सांसद हैं उनकी संख्या कुल मिलाकर है 62। वहीं अगर रिक्त अगर मैं सीटों की बात करूं तो लगभग 8 जो जगह है वो खाली है। तो इस तरह से कुल मिलाकर होते हैं 543 सीट, यानी कि ये पूरी संसद की स्थिति है। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी अगर देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है, उसके अलावा ये दूसरी पार्टी है, इसमें कुछ सहयोगी पार्टी भी है। लेकिन जो विपक्ष जिसने आज अविश्वास प्रस्ताव लाया है उसके पास भी संख्या बल कुछ इतनी ज्यादा देखने नहीं मिल रही है। लेकिन बीजेपी के एनडीए की अगर कोई सहयोगी दल धोखा दे देती है तो उसे नुकसान हो सकता है। एक बार अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया तो आने वाले 6 महीने तक नहीं लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव का एक और नियम है, इस नियम के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव एक बार में अगर नामंजूर हो जाए तो विपक्षी दल 6 महीने के बाद फिर से इस पर नोटिस दे सकते हैं। यानी कि सदन में आने के बाद मंजूर कर लिया गया और उसके बाद उसे नामंजूर कर दिया जाता है चर्चा होने के बाद, तो आने वाले 6 महीने तक जो भी दल है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है। मोदी सरकार के खिलाफ जो लाया गया अविश्वास प्रस्ताव है वो देश का 27वां अविश्वास प्रस्ताव है। हम आपको बताते हैं कि अब तक देश में कब कब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। जेबी कृपलानी ने संसद में अगस्त 1963 में नेहरू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा था, लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था क्योंकि उनके पास 62 सदस्यों का समर्थन था। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो वो लाया गया है इंदिरा गांधी की सरकार में। इंदिरा गांधी की सरकार के बाद नरसिम्हा राव और लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में भी 3-3 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी दो बार सदन में विश्वास मत हासिल करने की कोशिश की और दोनों बार उन्हें नाकामयाबी हासिल हुई। पहली बार 1996 में उन्होंने वोटिंग होने के पहले ही सरकार छोड़ दी, वहीं 1998 में एक वोट कम होने के वजह से उन्हें अपनी सरकार गिरानी पड़ी। तो ये था अब तक का अविश्वास प्रस्ताव की तो ये था अब तक के अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में ये पहला अविश्वास प्रस्ताव आया है। देखते हैं कि इस अविश्वास प्रस्ताव से सरकार कैसे निकलती है, या फिर ये अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार को झटका देगा, और झटका देता है तो कौन सा वो दल होगा जो मोदी सरकार यानी कि मोदी के साथ गद्दारी करेगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए।